चल रहा था 25/4/1966 सोमवार को पहले पेज के मध्य आदमी बात चल रही थी, श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि भारत में भी निराकार को मानने वाले बहुत हैं और विदेशों में तो सारे ही धर्म वाले निराकार को मानते हैं। अगर गीता में निराकार का नाम होता, माना निराकारी तेज वाले का नाम होता, तो सभी दूसरे धर्म वाले भारत को और भारत की धर्म पुस्तक को मान देते। जैसे उन्होंने अपने धर्म पिताओं को मान दिया है, जो भी धर्म पिताएं आए, चाहे बुद्ध आए हो, क्राइस्ट आए हो, शंकराचार्य गुरु नानक आए हो, उनके चेहरे को ध्यान से देखो, वो निराकारी स्टेज वाले हैं या साकार शरीर में उनकी बुद्धि लगी हुई है? उनकी आंखों से वो निराकारी अवस्था स्पष्ट देखने में आती है। जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वो देह अभिमानी होने के कारण निराकारी स्टेज को एकदम धारण नहीं कर सकती। वो तो धर्म के धर्म पिताएं हैं जो डायरेक्ट आत्मलोक से आते हैं। आत्माओं का लोक माना परम पिता परमात्मा का लोक, बाप का घर। ये और धर्म वाले तो बाप हैं अपने अपने धर्मों के, लेकिन उन बापों का भी जो बाप है, जिसे और धर्म वाले गॉड फादर अल्लाह आदि के नाम से पुकारते हैं, वो भी परम धाम से सृष्टि पर आता है। और आकर के कोई देह अभिमानी मनुष्य में ही प्रवेश करता है। इसे गीता में लिखा हुआ है, प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। और गीता में तो चित्र भी दिखाते हैं, गीता के टाइटल पेज पर कि भगवान अर्जुन के रथ में आया, अब विद्वान आचार्यों ने स्थूल रथ समझ लिया, तो उल्टा अर्थ लगाइए। जबकि शास्त्रों में ही लिखा हुआ है शरीरम रथम विद्धि, शरीर को रथ समझे। इंद्रियाँ है अन्य हो, इंद्रियों को घोड़ा समझ। घोड़ों की मन बुद्धि लो लगाम को। भगवान बाप अपने हाथ में लेते हैं। का अपना शरीर रूपी रथ नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अपना शरीर न होने के कारण वो साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करता है और इसलिए प्रवेश करता है। जो काम और धर्म पिताएं नहीं कर सके, वो काम करने के लिए प्रवेश करता है। कौन सा काम? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम कोई भी धर्म पिता ने नहीं किया। और ये जब से वो धर्म पिताएं सृष्टि पर आते हैं, दुनिया जाती ही नरक बनती जाती है। मनुष्यों की मेंटेलिटी गिरती जाती है। वो धर्म पिताएं भी 100 वर्ष के अंदर आते हैं और आकर के अपनी अपनी धारणाओं अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म पिताओं का जो बापों का बाप कहा जाता है, वो भी 100 वर्ष के अंदर है। सनातन धर्म की स्थापना करके जाता है। स्वर्ग बना के जाता है और स्वर्ग तो वो ही बना ही सकता है जो सदैव सही स्थिति में स्थित रहे। कभी भी देह बान में ना आवे। और देह धारी जो धर्म पिताएं हैं, उनको तो संग का रंग लगता है, देवान का कैंप लगता है। परम पिता पिताओं का पिता, इसको तो संग का रंग नहीं लगता है। ये तो सदैव आत्मा विमान में रहता है। तो स्वर्ग का वर्षा देने वाला वो तो स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है और रचयिता वो ही हो सकता है जो सदैव सही स्थिति में स्थित रहे। तो धर्म पिताएं तो सदैव सही स्थिति में स्थित नहीं होती। परम नाम से आते हैं, आत्मिक स्थिति में आते हैं, बाप के घर से आते हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर के उनको संग का रंग लग जाता है। और संग का रंग तो सबको लगता है, देवताओं को भी लगता है, राम कृष्ण जैसी आत्माओं को भी संग का रंग लगता है। तो पहले से पहले समझानी ये है कि वो बापों का बाप कौन है, परम पिता कौन है, जो ही का पति भगवान कहा जाता है। कृष्ण को तो हमेशा बच्चे के रूप में पूजा जाता है, वो तो बाप का पहला पहला बच्चा है, जिसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। भगवान बाप आते ही है नरको नारायण 16 कला संपूर्ण बनाने, तो बाद में गलतफहमी हो गई कि कृष्ण द्वापर में आया, नारायण सतयुग में था। नहीं, द्वापर तो 8 कलाओं वाला होता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। सतयुग 16 कलाओं वाला होता है, तो 8 कलाओं वाले द्वार युग में 16 कला संपूर्ण कहां से पैदा होंगे? तो ये बड़ी भूल हो गई है। जो कृष्ण को गीता का भगवान बनाई दिया है, बाप को बुला दिया, सारी दुनिया से उसे निराकार बाप को बिलक कर दिया। ये बड़ी भूल है भारत की। ये वो है शिव बाबा, कृष्ण को कोई कृष्ण बाबा कहते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बच्चे से वर्षा नहीं मिलता है, बाबा माने ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर का तो वर्षा मिलता है। तो पहले पहले वर्षा मिला है ये है भारत को। नाम ही पड़ता है भारत, ऐसे शास्त्रों में प्रसिद्ध भी है, कहावत भी है, जानते भी है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, लगा रहता है, वो भारत ही पहले पहले नंबर में है। बाद में उसके बच्चे बनते हैं शहजादा कृष्ण और शहजादी श्रीराधे। बाप को तो बीज कहा जाता है, वो सृष्टि वृक्ष का बीज है। और कृष्ण और राधा तो पहले पहले पत्ते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना, यानी दो मनुष्य तो नहीं हो सकते हैं ना, पहले पत्ते के रूप में। तो महिमा तो सदैव ऊंची से ऊंची की करनी चाहिए। बाप ऊंचा या बाप की रचना किसने ऊंचा, तो वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। फिर वो है ऊंचे से ऊंचा विश्व का पहला मालिक। ऐसे तो नहीं कि दो बच्चे होते हैं ऊंचे से ऊंचे बाप है, उसका ऊंचे से ऊंचे बच्चा भी एक ही होगा। कहते तो है ना त्रिमूर्ति केवल, या कह देते हैं ब्रह्मा की तीन मूर्ति है। ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव। तो बड़ा देवता कौन हुआ? बाप का बड़ा बच्चा कौन हुआ? वो ही है जो पहले पहले पुरुषार्थ करके अपने निराकारी शेख बनाता है। और बाप तो आते ही है बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने के लिए। बाप निराकार है तो बाप बच्चों को भी निराकारी स्टेज वाला बनाता है। जो ऐसी निराकारी स्टेज बनाते हैं पुरुषार्थ करके, वो ही ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं। इसको कहा जाता है सूर्यवंशी गीति या दैवी विनय से। तो पहली पहली बात जो मूल बात है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए कि शिव बाबा गीता का भगवान है। बाबा बड़ा होता है, पशु तो बच्चा है जिस बच्चे की पूजा भी करते हैं। वो कष्ट रचना है, रचयिता शिव बाबा की। इसलिए शास्त्र में कृष्ण बच्चे को चित्रों में शिव बाबा की गोद में भी दिखाते हैं। कि कृष्ण बच्चा शिव शंकर भोलेनाथ की गोद में बैठा हुआ है। तो ये है बड़ी से बड़ी भूल। गीता को माता के रूप में तो मानते हैं, परंतु माता का जो बच्चा है उसे गीता पति भगवान बना दिया है। तो बड़ा जुल्म कर दिया। तो ये बातें मनुष्य के कान खड़े कर देंगी। कितना जन्म जन्मांतर हम गीता को समझते आए, श्री कृष्ण भगवान वाक गीता सुनाने वाला भगवान, देवी देवता धर्म स्थापन करने वाला भगवान, गीता ही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का साथ, परंतु वो गीता का ज्ञान, गीता का शास्त्र कोई सत्युग में बैठ करके नहीं सुनाया है। सत्युग में ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं, वहां तो सब होते ही है सुखी। कैसे भी है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो सतयुग से पहले तो कलयुग होता है, रौ रव नरक की दुनिया, उस नरक की दुनिया में आप आ पाते हैं। और पतित तन में नारकीय तन में आते हैं, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाते हैं। तो कहें कि सतयुग और कलयुग के संगम पर आते, जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की याद होती है, उस संगम युग के टाइम पर गीता का ज्ञान सुनाया है। तो चित्रों में पहले पहले, सबसे पहले कि उसका भी चित्र देना है और उनका भी देना है। बताना है कि गीता का भगवान ये कहता है मानवीय सृष्टि की पुनर्रचना करने वाला है, वो स्वयं पुनर्जन्म रहते हैं। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी श्री कृष्ण के तो अनेक जन्म गए हुए, शिव बाबा का भी चित्र देना है, तो इस भूल से कि कृष्ण गीता का भगवान भारत इंसॉल्वेंट पौड़ी तुल्य बन गया है। और ये भूल, इसको अभूल बनाने के लिए बाप आते हैं। आते हैं और पौड़ी तुल्य भारत को आकर के हीरे तुल्य बनाते हैं। पौड़ी में और हीरे में क्या फर्क है? पौड़ी में अंदर अंधेरा ही अंधेरा और हीरे में रोशनी ही रोशनी। ये तो तुम पक्का जानते हो कि अभी संगम युग में हमको शिव बाबा हीरे तुल्य बनाए। हम कौड़ी तुल्य बन गए थे, अर्थात हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कौड़ी के अंधकार में समाई हुई थी। कौड़ी का जैसा शेप होता है ना, बुद्धि लटकी हुई थी, तो जो गीता कृष्ण वाली मनुष्यों ने बनाई है वो पढ़ते पढ़ते हम आकर के इंसॉल्वेंट बन गए। पावड़ी मिसल बन गए, बुद्धि में अंधकार कौड़ी के तुल्य छा गया। और मनुष्यों ने गीता की अनेक टीकाएं कर डाली, अनेक व्याख्याएं कर डाली, और वो व्याख्याएं एक दूसरे को ताक करने वाली बन गई। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि सच्चाई क्या है। गाया भी ऐसे जाता है, कौड़ी तुल हीरे तुल, क्योंकि ये सभी विद्वान आचार्य पंडितों की भूल निकल पड़ती है। साफ की बुद्धि कौड़ी तुल्य बन गई। देखो ये हैं भारत के गुरु, तो ये इतने झूठे हैं कि बड़ी बड़ी टीका की टीकाएं करते हैं, व्याख्याएं करते हैं, इतनी झूठी बातें बनाते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। जो भगवान ऊंचे से ऊंचे है उसको कहां कहां डाल दिया। तो ये इतने झूठे, वो सदगति कैसे कर सकते हैं किसी की। तो मूल बात है पहले पहले एकदम ये बात डालना, और ये बात बच्चों की बुद्धि में भी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा था कि मुझे याद करो, और अपने बरसे को याद करो। जिसे याद करेंगे वैसी स्थिति बन जाएगी। मुझे याद करो मन जैसे मेरी स्वयं स्थिति है, किसकी? शिव बाबा की। ऐसे ही मेरी याद में रहने से तुम्हारी भी स्थिति बन जाए, तुम्हारी जब सदाकारी की स्थिति बनेगी तो तुम सदैव स्थिति में रहने वाले देवता बन जाओगे। देवताएं आत्मिक की स्थिति में रहती हैं। तो मुझे याद करो और अपने बच्चे को याद करो। स्थिति में रहने से तुम नारायण मिशन देवता बन जा रही है। लक्ष्मी ये नारायण ये तुम्हारा बरसा है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। शास्त्रों में लिख दिया है कि कृष्ण ने कहा मुझे याद करो और बरसे को याद करो। अब ये कैसे हो सकता है? राइट कौन है? द्वापर के अंत में आने वाला कृष्ण भगवान राइट है, जो द्वापर के अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाता। यह बाप कलयुग सतयुग के संगम पर आते हैं, आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। वो बेहद का बाप राइट है। बेहद की दुनिया द्वापर के अंत में नहीं थी, वहां तो आबादी कम होती है। बेहद 500-700 करोड़ की दुनिया कलयुग के अंत में होती है। तो सर्वता सदगति दाता बाप कहा जाता है। वो बेहद का बाप है। कृष्ण बच्चा तो हद का है, जैसे धर्म पिताएं हद के बाप हैं। ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स क्राइस्ट के हुए हैं। दो सौ करोड़ से भी जाती फॉलोअर क्राइस्ट के हैं जो क्रिश्चियन बन गए, परंतु उसको भी बेहद का बाप तो नहीं कहेंगे। बेहद माने 500-700 करोड़। तो बाप कहते हैं कि भले कृष्ण राजा है, फिर भी तो हद का राजा है ना। 500-700 करोड़ विश्व के ऊपर तो राजा नहीं है। बाप को तो विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। और तो कोई भी धर्म में विश्व का नाथ नहीं हुआ, विश्व के ऊपर राजा ही नहीं कर सका। कहते हैं कृष्ण ने हिंसक युद्ध कराया, महाभारत युद्ध कराया, तो देखो इस दुनिया में जितने भी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हुए, बड़े बड़े हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, उन्होंने कितनी हिंसा कराई दी। सच्चाई को न जानने के कारण ऐसा हुआ। वेद का बाप है और वो हद का बच्चा है। ये बच्चियां भी नीचे जाती हैं। चलो इनको भी यही समझाना है। वो चित्त तो उसमें है ना, उसमें थोड़ा जास्ती है, परंतु बाबा कहते हैं बड़े बड़े अक्षरों में ये भूल लिखो, क्योंकि तो सारा मदार गीता के ऊपर है। ये गीता की ही बड़ी महिमा है, सर्वसार शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, सब शास्त्रों में ऊंची है। भगवत गीता का मतलब ये भगवान की गाई हुई गीता। तो गीता के साथ भगवान की भी बड़ी महिमा है। बाबा ने समझा दिया है, भारत सभी जो भी मनुष्य मात्र जो भी धर्म है उन सबका बड़ा तीर्थ है। कैसे अभी है, अभी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों का जमावड़ा कौन से तीर्थ में होता है? मुसलमानों के काबा में बहुत मनुष्य इकट्ठे होते हैं, उसके मुकाबले भारत को बड़ा सा बड़ा तीर्थ कैसे कहें? कहें कह सकते हैं, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो तो तब कहेंगे जब ऐसे दुनिया के सभी धर्म वाले और उनके सभी फॉलोअर्स तो भारत में आए हुए बाप के सामने झुक जाएं। तो क्या होगा? ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सभी टोलने लग पड़ेंगे। और भारत में भगवान के पास आने वाले जो हैं उसी ठिकाने को बड़े से बड़ा तीर्थ मानेंगे। सिर्फ कृष्ण का नाम देने से वो जो इतना महत्व है भारत का, वो सारा महत्व उड़ गया। और इस भूल के कारण भारत तमो प्रधान बन गया। सारी तुल्य बन गया है। तो ये सब ड्रामा के अनुसार, परंतु अब जान लिया है तो सावधान तो करना होता है ना। अब मनुष्यों को अभूल बनाना है तो पहले पहले उन मनुष्यों को यही समझाना होता है कि चित्र पहले पहले आने चाहिए बिल्कुल शॉर्ट में। बाबा समझाते बहुत हैं और बाबा कहते हैं आज आपको समझाया, कल फिर समझाएंगे, आप फिर दूसरों को समझा देंगे। हम तो चित्र लिख करके बैठ गए, वो बच्चा चित्र बना के बैठ गया। तो तुम जानते हो दिन प्रतिदिन वो ये बातें बताते रहते और वो गुई बातें तुमको सुनाते भी रहते हैं। फिर क्या करेंगे? उसको तोड़ करके फिर दूसरा बनाना पड़े। क्योंकि तुम्हारी गीता तो कभी फिनिश नहीं होती है, इसमें तो नई नई बातें ऐड होती रहती हैं। ये क्या हुआ? परिवर्तन ये तो होता ही रहेगा और पिछाड़ी तक भी होता रहेगा। सबसे मूल बात तो बच्चों की बुद्धि में रखना चाहिए। अभी हमको बाबा याद तो पड़ता है ना, कि ब्रह्मा बाबा याद पड़ता है या कोई ब्रह्मा कुमारी या दादी दादा याद करने लग पड़ते हैं। ये मन मना बाबा किसने कहा? मन मना बाबा तो होना है ना, वो तो करना ही है ना। मत माने मेरे, मना माने मन में, बाबा माने समझ। तो बाप के मन में जो एक संकल्प है क्या? नरक को स्वर्ग बनाना। तो बच्चों की बुद्धि में भी वो एक संकल्प ही पक्का होना चाहिए। बाबा शिव बाबा हमको अभी स्वर्ग का बरसा दे रहे हैं। और क्या कहते हैं? मन मना बाबा मुझे याद करो, तुम्हारा भी कर्म विनाश हो जाएगा। ये कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होगा। भक्ति मार्ग वालों से कहा बाबा ने, बच्चों से
बच्चे कहाँ कृष्ण को याद करते, बच्चे तो जानते हैं है? है बच्चों की बुद्धि इस निराकार बाप को नहीं पकड़ती है, बार बार बुद्धि साकार में लटक जाती है। इसलिए एक कन्नड़ की मुरली में तो क्लियर लिखा हुआ है, न साकार को याद करना है न निराकार को याद करना है और न आकारी को याद करना है। फिर किसको याद करना है? हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं। ये निराकार और साकार की प्रवृत्ति है, पहली पहली प्रवृत्ति है। निराकार बाप का तो कहना ही है, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म देता हूँ, और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। सुनो, अनेकों नामधारी ब्रह्मा में से अव्वल नंबर कोई तो ब्रह्मा होगा जिसमें बाप ने पहले पहले प्रवेश किया, वो कौन? वो ही परम ब्रह्म है। जाते भी है गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म जिसमें बाप साक्षात प्रत्यक्ष होते हैं, उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म की शिव जयंती महाशिवरात्रि गाई हुई है, उसको याद करना है। बाकी और देहधारी गुरुओं को याद नहीं करना, जो गाते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, क्योंकि एक ही शिव बाबा है जो सर्वशक्तिवान और वो ही वर्षा देते हैं। और वर्षा लेने की युक्ति भी वो ही बताते हैं। ये युक्ति प्रश्न नहीं बताते हैं, क्यों? प्रश्न सतयुग में पैदा होता है इसलिए है। हाँ, वो प्रश्न वाली आत्मा बच्चा बुद्धि भी है, अंतिम जन्म में भी बच्चा बुद्धि है। दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जन्म लेते हैं, उनमें बाप माँ के रूप में पार्ट बजाने के लिए आते हैं तो भी बच्चा बुद्धि। जितना मुरली में बोल दिया बस उतना ही बोलेंगे, उसके आगे उनकी बुद्धि चलती ही नहीं। छोटा बच्चा होता है वो बाप को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। बड़ा होता है तो बाप की पहचान मिलती है, किसके द्वारा? माँ के द्वारा। तो गीता हमारी माता है। मना जो मुरलियां है वो क्या है? हमारी माता है। उन मुरलियों रूपी गीता माता के द्वारा राम वाली आत्मा को यज्ञ के आदि में होने वाले उस वेद के बाप का परिचय मिला, नहीं तो कहाँ से मिला है? कोई और युक्ति है? नहीं है। तो बाप को पहचानने की युक्ति कृष्ण और ब्रह्मा नहीं बताते हैं, कौन बताता है? जो गीता का प्रैक्टिकल में भगवान है वो गीतापति भगवान ही बताते हैं। उस साकारतन के द्वारा उसे बताने के लिए तो मुख चाहिए। कृष्ण की युक्ति तो कोई चलाता ही नहीं है क्या? और कोई समझा के भी नहीं है। कृष्ण उसको ब्रह्मा के द्वारा युक्ति बताई, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, प्रैक्टिकल में घुमाता है कैसे? घुमाते भी हैं तो वो ही सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, फिर सत्युग त्रेता द्वापर कम कलयुग संगम युग, यही रट्टा लगाते रहते। तो समझते भी नहीं है, कोई को समझाते भी नहीं। जब कृष्ण अक्षर आता है तो मनुष्य कृष्ण को याद कर लेते हैं, भले कहा है कृष्ण ने देह के सभी संबंध, अब भले समझो कि कृष्ण ने कहा है देह और देह के सभी संबंध छोड़ मुझे याद कर। परंतु वेद का बाप तो कहते हैं कि देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा निश्चय कर मामिकम याद करो। ये आत्मा समझ करके कृष्ण को कैसे याद करेंगे? फिर भी तरीका तो चाहिए। तो जरूर आत्मा बाप को याद करेगी, क्योंकि कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप है ही नहीं, वो तो सच्ची रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। उन पत्तों में बड़ा पत्ता है, बड़े भाई को क्या कहेंगे? दादा कह सकते। फिर भले बाप के साथ दादा लगा दो, बाकी कृष्ण कोई सब आत्माओं का बाप नहीं है। तो बच्चों की बुद्धि में ये बात बुझनी चाहिए। तो कहा जाता है विचार सागर मंथन करके अच्छी तरह से बुद्धि में धारणा। तो बहुत बच्चों को अब ये बात तो थोड़ी है ना, ये भी ऐसे बुद्धू मनुष्य हैं। देखो जैसे ये मोहन माँ है, कितनी अच्छी, कितनी गट्टी मोटी, और मोह का कीड़ा होने के कारण याद ही नहीं पड़ता है। तो वो जो अंजाम किया हुआ है कि और संग बुद्धि का तो संग तोड़, एक संग जोड़ूंगी, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, दूसरा न कोई माना दूसरे को याद नहीं करना। बाबा मैं आपको ही याद करूंगी, परंतु ये मोह बड़ा कड़ा भूत है। तौबा तौबा, हर एक बार देखा गया है, बस मोह भी एक बंदर बनाए देता है, क्योंकि बंदर में मोह बहुत होता है। ऐसा कोई जानवर नहीं देखा होगा जो बच्चा मर जाए और उसकी खाकर को महीने भर अपने पेट में लपटाए रहे। तो बंदर में तो बहुत मोह होता है। मिसाल देते हैं ना, भूंगरे के मुट्ठे उठाएंगे, वो बंदर आया है उनको पकड़ने के लिए। अभी वो ये मुट्ठी छोड़े, तो मुट्ठी जिसमें मिट्टी की देगची में मुट्ठी डाली है, वो देगची भी टूटे, मुट्ठी छोड़ता ही नहीं। तो मोह बस है, वो भूंगरा नहीं छोड़ेगा मुट्ठी में से। मुट्ठी में जो चना पकड़ा हुआ है पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं। और भूंगरा मुंह में न जाने से पछताएगा। तो ये मिसाल बंदर का दिया हुआ है। वो इतना है कि उनका बच्चा मर जाएगा, मर जाएगा, बांस हो जाएगी, बदबू आएगी, छिल्ली छिल छिल हो जाएगी, और वो कच्छ में उठाकर फिरता रहेगा। मोहनुमा के मालिक है ना, तुम्हें मिसाल देता हूँ। कोई का तो मिसाल देना चाहिए ना, तो बाबा बंदरों का मिसाल देते हैं। और शास्त्रों में रामायण में किसका मिसाल आया है? राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। भले रामायण में कहा है मोह सकल व्याधिन करमुल्ला, सब प्रकार की जो व्याधियां हैं बीमारियां हैं उन सब की जड़ है मोह। ओम शांति।